लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर और नारी के रूप में भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओ, अध्याय 7 मिलन की नई राहें के बारे में जिक्र करते हुए हमने अपने पिछले प्रसारण में सच्चाई से नई शुरुआत की बात कही। सत्य हमें प्रतिकार हेतु अग्रसर ना करे, बल्कि यह हमें मेल मिलाप करने और क्षमा देने हेतु प्रेरित करे। इसका अर्थ हमारे लिए यही है कि हम दुख में टूटे हुए परिवारों को इस बात से अवगत कराएं कि उनके खोए प्रिय जनों के साथ क्या हुआ है। सत्य का अर्थ यह स्वीकार करना है कि क्रूर और हिंसक लोगों द्वारा कार्य में लाए गए नाबालिगों के साथ क्या हुआ। सत्य का अर्थ है हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के दर्द को पहचानना। मनुष्य के विरुद्ध किया गया प्रत्येक हिंसा का कार्य मानवता के शरीर में एक घाव है। हर हिंसक मौत हमारे मानवीय सम्मान को नष्ट करता है। हिंसा से अधिक हिंसा उत्पन्न होती है, घृणा से अधिक घृणा, मृत्यु से अधिक मृत्यु होती है। हमें इस चक्र को तोड़ना होगा जो अपरिहार्य लगता है। श्रोताओं, शांति के मार्ग का अर्थ समाज को एक रूपता की चादर ओढ़ाना नहीं है, बल्कि यह लोगों को एक साथ मिलकर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना है, जहां वे एक दूसरे की बगल में रहते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं, जो हर एक के लिए लाभदायक होता है। व्यावहारिक प्रस्तावों की एक विस्तृत विविधता और विविध अनुभव हमें साझा उद्देश्यों और जन सामान्य की सेवा करने में मदद कर सकते हैं। एक समाज जिन समस्याओं का अनुभव कर रहा है, हमें उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानने की जरूरत है, जिससे विभिन्न रूपों में उनकी समझ और उनका समाधान हमारे लिए प्रशंसनीय होगा। सामाजिक एकता का मार्ग हमेशा इस संभावना को स्वीकार करता है कि दूसरों के पास समाज के विकास में योगदान देने हेतु कम से कम आंशिक रूप में एक वैध दृष्टिकोण है, भले ही अतीत में उन्होंने कोई भी गलती क्यों ना की हो या बुरी तरह के काम ही क्यों ना किया हो। हम अपने को उन बातों तक सीमित ना रखें जिन्हें उन्होंने कहा है, बल्कि हम उनकी क्षमताओं का जो उनमें है महत्व दें। एक क्षमता जो सदैव अपने साथ एक नई आशा को लेकर आती है। श्रोताओ, दक्षिण अफ्रीका के धर्माध्यक्ष गणों ने इस बात की ओर इंगित कराया है कि सच्चा मेल मिलाप सक्रिय रूप से हासिल किया जाता है। एक नए समाज की स्थापना करने के द्वारा, एक समाज जो दूसरों की सेवा में आधारित हो, न कि दूसरों पर शासन करने की चाह रखता हो, एक समाज जो अपने संसाधनों को दूसरों के संग बांटने की चाह रखता हो, न कि स्वार्थ में संघर्ष के कारण जितना हो सके संपत्ति का दोहन करता हो, एक समाज जहां मानव के रूप में एक समुदाय की भांति रहना अपने में अधिक महत्व रखता है, न कि छोटे दल, परिवार, देश, जाति या संस्कृति को महत्व देना। दक्षिणी कोरिया के धर्माध्यक्ष गणों ने सच्ची शांति के संदर्भ में कहा है कि हम इसे केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम वार्ता के माध्यम न्याय, मेल मिलाप और एक दूसरे के विकास हेतु कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत रूप से अपनी पहचान खोए बिना विभाजन को दूर करने के लिए कार्य करना हम में यह प्रकट करता है कि सबों के संग संयुक्त रहना हम सबों की प्रवृत्ति है। वास्तव में समाज को लाभ होता है जब हर व्यक्ति और समुदाय एक दूसरे के संग मिलकर रहने हेतु अपने में सहज महसूस करते हैं। एक परिवार में अभिभावकों, दादा दादियों और बच्चे अपने में सहज महसूस करते हैं जब कोई अपने में परित्यक्त होने का एहसास नहीं करता है। यदि किसी को कोई समस्या है जो अपने में गंभीर ही क्यों ना हो, जो व्यक्ति के अपने ही कार्यों का परिणाम क्यों ना हो, परिवार के दूसरे सदस्य उसकी सहायता करने हेतु आते हैं, वे उसकी मदद करते हैं। व्यक्ति की समस्या पूरे परिवार की समस्या बन जाती है। परिवारों में हर कोई सबों के एक उद्देश्य हेतु, सबों की भलाई हेतु कार्य करता है। हम किसी को अपने से अलग नहीं करते, लेकिन सबों को प्रोत्साहित और सबों का सहयोग करते हैं। परिवार के सदस्य अपने में लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन परिवार के साथ लगाव एक वह बात है जो नहीं बदलती है। परिवार के कलह सदैव बाद में सुलझाए जाते हैं। परिवार के हर सदस्य का सुख और दुख सबों के द्वारा अनुभव किया जाता है। परिवार होने का अर्थ हमारे लिए यही है। यदि हम अपने राजनीतिक विरोधी या पड़ोसी को उसी तरह देख सकते हैं जैसे कि हम अपने परिवार के बच्चों या दंपतियों, माता या पिता को देखते हैं, तो यह अपने में कितना अच्छा होता। क्या हम अपने समाज को प्रेम करते हैं या यह अब तक हमसे दूर है जिसे हम अपरिचित के रूप में देखते और अपने को उसमें संलग्न नहीं करते हैं। यह कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसके बारे में हम अपने को समर्पित नहीं पाते हैं। श्रोताओं, समझौता बहुत बार हमारे लिए जरूरी होता है जिसके द्वारा शांति के ठोस मार्ग निकलते हैं। यद्यपि परिवर्तन की प्रक्रिया जो लंबे समय तक शांति को बनाए रखती है लोगों के द्वारा ही पहल की जाती है, जहां हर कोई चाहे वह अपने दैनिक जीवन को कैसे भी जी रहा है अपनी ओर से एक प्रभावकारी खमीर की भांति कार्य कर सकता है। बड़े परिवर्तन कुर्सी या दफ्तर में बैठकर उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि हर किसी को एक बड़ी सृजनात्मक परियोजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की जरूरत है। यह इतिहास का एक नया अध्याय लिखना है, एक पृष्ठ जो आशा से भरी हो, शांति और मेल मिलाप से भरा हो। शांति एक वास्तुकला है जिसमें समाज के विभिन्न संस्थाएं योगदान करते हैं, प्रत्येक अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र अनुसार, लेकिन शांति एक कला भी है जिसमें हम सभी शामिल होते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हुई विभिन्न शांति प्रक्रियाओं से हमने सीखा है कि शांति बनाने के ये तरीके बदले की भावना से ऊपर राजनीति और कानून के बीच नाजुक सद्भाव आम लोगों की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अच्छी राजनीतिक या आर्थिक समूहों के बीच नियामक ढांचे और संस्थागत व्यवस्था से शांति प्राप्त नहीं होती है। हमारी शांति प्रक्रियाओं में उन क्षेत्रों के अनुभव को शामिल करना हमेशा सहायक होता है जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है, ताकि समुदाय स्वयं सामूहिक स्मृति के विकास को प्रभावित कर सके। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं प्यार मिलता है। तेरे हाथों को मैं थामूं, सहारा मिलता है। तेरी आंखों में मैं देखूं तृप्त होता।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस अपने सुनियोजित उपचार एवं पुनर्वास को जारी रख रहे हैं, जिसके कारण वे जल्द ही वैटिकन लौटेंगे। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने 13 जुलाई को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बतलाया कि संत पापा फ्रांसिस अपने सुनियोजित उपचार एवं पुनर्वास को जारी रख रहे हैं, जिसके लिए वे जल्द ही वैटिकन लौटेंगे। उन्होंने बतलाया कि इन दिनों वे जितने मरीजों से मिले हैं, उनमें बिस्तर पर पड़े और घर नहीं जा पाने वाले मरीजों को अधिक प्रभावित किया है कि वे इस समय को एक अवसर के रूप में जिएं, भले ही उन्हें दर्द का अनुभव हो। अपने बीमार भाई या बहन के साथ अगले बिस्तर में खुद को खोलें, जिनके साथ वे समान मानवीय कमजोरी साझा करते हैं। विगत 4 जुलाई को आतंकी ऑपरेशन के बाद संत पापा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। कोंगो के कार्डिनल लॉरेंट मानसेओ पासिया का निधन रविवार को फ्रांस के वासेल्स में हुआ। वे 81 साल के थे। जुलाई के शुरू में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तब उन्हें फ्रांस के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। वे 2018 तक कार्डिनल परिषद के सदस्य थे। किनशासा के महाधर्माध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने देश की शांति के लिए काम करने का निर्णय लिया था। कार्डिनल लॉरेंट प्रथम अफ्रीकी थे जिन्होंने रोम के परमधम पीठ बाइबल संस्थान से धर्म ग्रंथ पर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। संत पापा फ्रांसिस द्वारा परमधम पीठ रोमी कार्यालय में सुधार हेतु गठित कार्डिनल परिषद के भी वे सदस्य रह चुके हैं। कार्डिनल अपने देश कोंगो में शांति बहाली के लिए प्रयासरत थे। कार्डिनल लॉरेंट का जन्म 1939 को कोंगो में हुआ था। 1963 को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ एवं 1980 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा वे धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। पोप बेनेडिक्ट 16 ने उन्हें 20 नवंबर 2010 को कार्डिनल नियुक्त किया था। 2012 में उन्होंने संत पापा की उपस्थिति में रोमन कुरिया के लिए 40 काल की आध्यात्मिक साधना का संचालन किया था और 13 अप्रैल 2013 को संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें कार्डिनल परिषद का सदस्य नियुक्त किया था। संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल लॉरेंट के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने 13 जुलाई को किनशासा के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल फ्रीडोलिन अमोंगो बेसुंगू को तार संदेश भेजकर वहां की कलीसिया के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा। किनशासा के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल लॉरेंट के निधन की खबर पाकर मैं दुखी हूं। मैं आपको, उनके परिवार के सदस्यों एवं सहायक धर्माध्यक्षों और इनेंगो किसान गणी तथा किनशासा के विश्वासियों, जिनके बीच उन्होंने सफलतापूर्वक प्रेरित कार्य संपन्न किया, अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं पिता से प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी पूरी दया से उन्हें अपनी शांति में प्रवेश पाने दें। उन्होंने कहा कि इस महान आध्यात्मिक व्यक्ति को कलीसिया की सेवा के लिए जहां भी भेजा गया, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया और विश्वासियों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया। धर्माध्यक्ष के रूप में उन्होंने खासकर गरीबों पर अधिक ध्यान दिया। इस तरह उन्होंने कलीसिया में नबी के मिशन को पूरा किया। न्याय, शांति एवं एकता के प्रेमी के रूप में वे कोंगो के समग्र मानव विकास में संलग्न थे। वे अपने लोगों के बीच वार्ता एवं मेल मिलाप के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। उनका योगदान देश की उन्नति में महत्वपूर्ण रहा। संत पापा ने कार्डिनल के प्रियजनों, धर्म प्रांतीय परिवार और दफन क्रिया में भाग लेने वाले सभी लोगों को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया। मंगलवार को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से इटली आने वाले लेस्बोस के 34 शरणार्थियों का स्वागत किया गया, जिन्हें इटली के विभिन्न प्रांतों में आश्रय प्रदान किया जाएगा। शरणार्थियों में कुछ अकेले बच्चे भी हैं। सन इजिदियो समुदाय द्वारा मिली जानकारी अनुसार आज सुबह 9:30 मानवे रास्ते से होकर ग्रीक द्वीप लेस्बोस के 34 शरणार्थी फ्यूमिचिनो पहुंचे। वे 13 देशों से हैं। उनका स्वागत देश में मानवीय रास्ते के समेकित और सफल मॉडल के अनुसार किया गया है, जिसने 2016 से ही 3,700 शरणार्थियों को इटली, फ्रांस, बेल्जियम और अंदोर्रा में उनके सुरक्षित प्रवेश को संभव बनाया है तथा उन्हें मानव तस्करी से बचाया है। जानकारी के अनुसार इस मानवीय रास्ता को सन इजिदियो समुदाय एवं अंतरिम मंत्री द्वारा 22 सितंबर 2020 को एक नवाचार पर हस्ताक्षर से संभव बनाया गया है। उधर नेपाल की काथे कलिसिया के समाज सेवा विभाग का उद्देश्य है नेपाल के अस्पतालों की मदद करना, खासकर ऑक्सीजन सिलेंडर या सुरक्षात्मक उपकरणों की आपूर्ति द्वारा। नेपाल की काथे कलिसिया के समाज सेवा विभाग ने कैथोलिक राहत सेवा के साथ एक संयुक्त पहल जारी किया है, जिसके तहत वर्तमान कोविड 19 संकट के दौरान देश के अस्पतालों में सबसे जरूरी मेडिकल उपकरण प्रदान किए जाएंगे। जुलाई से सितंबर तक चलने वाली कारितास नेपाल योजना का उद्देश्य है नेपाल के 14 जिलों के 20 अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति करना। बृहस्पतिवार को कारितास नेपाल ने काठमांडू के महिला अस्पताल और परोपकार मैटरनिटी को मेडिकल सामग्री सौंप दी। अस्पताल के डॉक्टर सुनील शर्मा आचार्य ने कृतज्ञता के साथ उपकरणों को स्वीकार किया तथा कहा कि इन उपकरणों का प्रयोग पहली पंक्ति पर कार्यरत कर्मचारी करेंगे, जो अस्पताल के कोविड वार्ड में अपने जीवन के लिए जूझ रहे बच्चों और माताओं की देखरेख करते हैं। कारितास नेपाल के मैनेजर देवेंद्र पोखरेल ने कहा कि उनका मानना है कि उपकरण उन अस्पतालों की मदद करेंगे जिन्होंने रोगियों की सेवा करने के लिए संघर्ष किया है। जब महामारी की दूसरी लहर ने संक्रमण की उच्च दर को ट्रिगर किया और गंभीर श्वसन समस्याओं वाले रोगियों को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा। दक्षिणी दिल्ली के लाडोसराय स्थित लिटिल फ्लावर गिरजाघर के विध्वंस ने राजधानी में रहने वाले सीरो मालाबार कैथोलिक कलीसिया को परेशान कर दिया है। लिटिल फ्लावर पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर जोश ने मैटर्स इंडिया को बतलाया कि 12 जुलाई की सुबह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी 3 बुलडोजर और 150 पुलिस बल के साथ आए थे। फादर ने कहा, उन्होंने कहा था कि वे सिर्फ गिरजाघर के बगल वाले होल को गिराएंगे, अतः मैंने गिरजाघर के पौत्र वस्तुओं को नहीं हटाया था। जैसे ही सोशल मीडिया द्वारा गिरजाघर गिराए जाने की खबर फैली, पल्लीवासी एकत्रित हो गए और गिरजाघर गिराए जाने का विरोध करने लगे। उसके बाद शाम को मोमबत्ती जुलूस की गई। फरीदाबाद सिरो मालाबाद धम प्रांत के विकर जनरल फादर जोसेफ ने कहा कि विध्वंस हमें वहां से निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन और भूमाफियाओं का एक सुनियोजित गुप्त एजेंडा था। उन्होंने दावा किया कि धम प्रांत ने 2015 में स्टे ऑर्डर प्राप्त किया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।